शकुंतला की घर में खुशियों का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। विशाल की शादी की खबर पूरे परिवार में फैल चुकी थी और अब हर कोई तैयारियों में जुट गया था। घर के आंगन में रंग बिरंगी झालरें लग चुकी थीं, दीवारों पर फूलों की सजावट की जा रही थी। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया था। हर तरफ हंसी, शोर और उत्साह का माहौल था। शकुंतला तो जैसे जमीन पर पैर ही नहीं रख रही थी। वर्षों से जिस दिन का इंतजार था वो आखिर आ ही गया था। सुबह से रात तक वो कभी केटरिंग वालों के पीछे भागती, कभी सजावट देखने पहुंच जाती और कभी रिश्तेदारों के ठहरने की व्यवस्था में लग जाती। अरे बेटा, वो फूल इधर लगवाओ और सुरु, मिठाइयों का ध्यान रखना, किसी मेहमान को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरा घर उसकी आवाज से गूंजता रहता। विशाल भी बाहर से जितना शांत दिख रहा था, अंदर से उतना ही उत्साहित था। दोस्त लगातार उसे चिढ़ा रहे थे। कभी कोई कहता, भाई अब आखिरी आजादी के दिन चल रहे हैं, तो कोई हंसकर बोलता, आज जितना मुस्कुरा ले शादी के बाद हिसाब बराबर हो जाएगा, और हर बार विशाल हंसकर उन्हें जवाब दे देता। इधर रत्ना देवी का परिवार भी शादी की तैयारियों में शामिल होने के लिए पहुंच चुका था। हवेली से सभी लोग एक साथ आए थे, रत्ना देवी, सुषमा देवी, विश्वनाथ, श्यामली, आर्यन और बाकी सदस्य। शकुंतला ने सबका बड़े प्यार से स्वागत किया। माँ, अब तो घर पूरा लग रहा है। रत्ना देवी ने मुस्कुराकर बेटी का माथा चूम लिया। भगवान की कृपा बनी रहे। अगले दो दिन रस्मों और हंसी मजाक में बीत गए। मेहंदी की शाम आई तो पूरा घर संगीत से गूंज उठा। महिलाएं ढोलक लेकर बैठ गईं, पुरानी शादी के गीत गाए जाने लगे। लड़कियां नाच रही थीं, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। श्यामली भी बाकी महिलाओं के साथ बैठी थी। कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान दिखाई दे रही थी। वो सबके साथ हंस रही थी, रस्मों में हिस्सा ले रही थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र अनायास ही विश्वनाथ पर चली जाती। विश्वनाथ लोगों के बीच मौजूद था, मगर पहले की तरह खुलकर शामिल नहीं हो रहा था। वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था, मेहमानों का ध्यान रख रहा था, लेकिन उसके भीतर की दूरी अब भी कायम थी। श्यामली ये महसूस करती थी, और शायद यही वजह थी कि उसकी मुस्कान में कहीं हल्की उदासी भी छिपी रहती थी। उधर आर्यन ने खुद को पूरी तरह शादी के कामों में झोंक दिया था। वो कभी सजावट वालों के साथ दिखाई देता तो कभी बारात की व्यवस्था देखता। उसे व्यस्त रहना आसान लग रहा था, क्योंकि खाली समय में उसके अपने विचार उसे परेशान करने लगते थे। समय तेजी से बीतता गया और आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह से ही घर में अलग उत्साह था। हर तरफ तैयारियों की भागदौड़ चल रही थी। विशाल शेरवानी पहनकर तैयार हो रहा था। दोस्त उसके कमरे में जमा थे, कोई साफा ठीक कर रहा था, कोई फोटो खींच रहा था और कोई लगातार मजाक किए जा रहा था। दूल्हे राजा, अभी भी वक्त है, भागना हो तो बता देना, कमरा ठहाकों से गूंज उठा। विशाल भी हंस पड़ा। शाम होते होते बारात निकलने का समय आ गया। बैंड वालों ने धुन बजानी शुरू कर दी। रोशनी से सजी सड़कें जगमगा उठीं। विशाल घोड़ी पर बैठा तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। बारात आगे बढ़ी, नाच गाना शुरू हो गया। आर्यन अपनी दोस्तों के साथ नाच रहा था। सुषमा देवी और रत्ना देवी भी मुस्कुराते हुए सब देख रही थीं। श्यामली एक तरफ खड़ी सबको देख रही थी। उसकी नज़र अचानक विश्वनाथ पर गई। कई लोग उसे नाचने के लिए खींच रहे थे। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर रिश्तेदारों के बहुत कहने पर वो भी कुछ कदम आगे बढ़ गया। सब लोग तालियां बजाने लगे। श्यामली के चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उसे वर्षों बाद विश्वनाथ को इस तरह हल्का और सहज देखकर अच्छा लगा। कुछ देर बाद बारात विवाह स्थल पहुंच गई। पूरा मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। दूर से ही उसकी भव्यता दिखाई दे रही थी। लड़की वालों ने पूरे सम्मान और गर्मजोशी से बारात का स्वागत किया। रस्में शुरू हुईं, हंसी मजाक चलता रहा। फिर वो समय भी आ गया जब विशाल मंडप में बैठा। कुछ देर बाद दुल्हन भी लाई गई। लाल जोड़े में वो बेहद सुंदर लग रही थी। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंज रही थी। पंडित जी विवाह की रस्में संपन्न करवा रहे थे। मंडप के चारों ओर परिवार के सदस्य बैठे थे। रत्ना देवी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपनी हथेलियां जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। हे प्रभु, बच्चों को हमेशा खुश रखना। सुषमा देवी भी भावुक हो गई थीं। वर्षों से उन्होंने इस परिवार को बढ़ते हुए देखा था। आज एक और नई शुरुआत उनके सामने हो रही थी। सात फेरे शुरू हुए। अग्नि के चारों ओर विशाल और उसकी दुल्हन ने सात कदम बढ़ाए। हर फेरे के साथ एक नया वचन जुड़ता गया, एक नया रिश्ता मजबूत होता गया। चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। परिवार के चेहरों पर गर्व और खुशी थी। रत्ना देवी की आंखें नम हो गईं। उनके सामने जैसे समय का पूरा सफर घूम गया। उन्हें अपने बच्चों की शादियां याद आ गईं, बीते साल याद आ गए, और आज उनका नाती अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहा था। फेरे पूरे हुए, मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म हुई और पंडित जी ने मुस्कुराकर घोषणा की, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मंडप में गूंज उठी। हर कोई खुश था, हर कोई मुस्कुरा रहा था। रत्ना देवी ने खड़े होकर दोनों को आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो। विशाल ने झुककर उनके पैर छुए, दुल्हन ने भी सम्मान से प्रणाम किया। रत्ना देवी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा, लेकिन उसी समय उनकी नजर दूर खड़ी श्यामली और विश्वनाथ पर गई। दोनों साथ खड़े थे, पर उनके बीच अब भी एक अनकहा फासला था। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता था, लेकिन एक माँ की नजर बहुत कुछ देख लेती है। रत्ना देवी के चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए हल्की पड़ गई। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान, जिस तरह आज इस नए रिश्ते की शुरुआत हुई है, उसी तरह मेरे बच्चों के रिश्तों में भी फिर से प्यार और विश्वास लौटा देना। मंडप में खुशियों का शोर गूंज रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस शादी के बाद परिवार के कई पुराने रिश्तों की परीक्षा भी शुरू होने वाली थी, और आने वाले दिनों में कुछ ऐसे सच सामने आने वाले थे जो कई लोगों की जिंदगी की दिशा बदल सकते थे।